दीवा को वैशाली से पता चला कि सुबह हाउस ओनर की तरफ से ब्रेकफास्ट सिर्फ उसी को मिला था। वो जितनी बार भी खाना देकर गई थी, वो सिर्फ दीवा के पास ले आई थी। दीवा को ये किसी तरह का इत्तेफाक नहीं लग रहा था। एक बार आर्यांश भी उसके लिए सुमन माँ का नाम लेकर खाना लेकर आया था। दीवा को समझते देर नहीं लगी कि इन सब के पीछे आर्यांश का ही हाथ है। दीवा को आर्यांश पर गुस्सा आ रहा था। वो उससे बात करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंची। बातों ही बातों में दीवा ने उस दिन का जिक्र छेड़ दिया था जिस दिन पृथ्वी की बर्थडे पार्टी थी। उसी दिन से आर्यांश और दीवा के बीच का रिश्ता खराब होना शुरू हुआ था। आर्यांश के इतना सब कुछ करने और उससे दूर चले जाने के बाद भी दीवा की बातों से उसे यही लगा कि आज भी उसके जख्म उतने ही ताज़ा हैं। ये सब सुनकर आर्यांश उसे तुरंत दूर चला गया था, तो वहीं दीवा को भी अपने शब्दों का एहसास हुआ। जब तक दीवा रेस्टोरेंट में थी, आर्यांश एक बार भी उसे अपनी आंखों के सामने दिखाई नहीं दिया। दीवा ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, उसने एक्स्ट्रा खाना पैक करवा लिया था। लंच हो जाने के बाद जब वेटर बिल कलेक्ट करने के लिए आया तो दीवा ने हिचकिचाहट भरे स्वर में पूछा, आर्यांश कहाँ है, मुझे उससे कुछ पूछना था। वो होम डिलीवरी के लिए गया है, वेटर ने जवाब दिया, लेकिन मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा। क्या उसने आपसे ये कहा कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहता है, दीवा झट से बोली। वेटर एक नज़र उसकी तरफ अजीब और सवालिया नज़रों से देखने लगा। वो हल्का हंसकर बोला, वो ऐसा क्यों कहेगा, आप पहली नहीं हैं जो उसके बारे में पूछती रहती हैं या जिन्हें आर्यांश से बात करनी होती है। वो यहाँ के स्टाफ में सबसे हैंडसम है। जब भी उसे किसी से पीछा छुड़ाना होता है तो इसी तरह ऑर्डर डिलीवर करने चला जाता है। वैसे किचन की दूसरी तरफ बैकडोर भी बना हुआ है। उस वेटर को ये सब सामान्य लगा। उसने बिल कलेक्ट किया और फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगा, तो वहीं उसकी बातों के बाद दीवा को और भी चिढ़ महसूस हो रही थी। ये मुझे दूसरी लड़कियों से कैसे कंपेयर कर सकता है, मैं उसके पीछे नहीं पड़ी, बस उस काम के लिए बात करना चाहती हूँ। उसे इतना ही एटीट्यूड दिखाना है तो छुप छुप कर हेल्प करना भी बंद कर दे, दीवा ने गुस्से में बड़बड़ाकर कहा और फिर शिव का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगी। उसने आसपास रहने वाले लोकल लोगों से एक्टिविटी स्कूल का एड्रेस लिया और फिर शिव को लेकर तुरंत वहाँ पहुँच गई थी। वो जगह हॉस्पिटल से 10 मिनट की दूरी पर थी। इवनिंग टाइम में तुम्हें यहाँ के केयरटेकर घर छोड़ देंगे। वो जो दादी हैं जो हमारी बिल्डिंग की ओनर हैं, तुम उनसे डुप्लीकेट की ले लेना या कुछ देर उनके पास रुक जाना। चाहो तो केयरटेकर के साथ घर जाने के बजाय मेरे पास हॉस्पिटल भी आ सकते हो, दीवा शिव को हर एक चीज समझा रही थी। मम्मा आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं पहली बार स्कूल नहीं जा रहा, आप अपना काम कीजिए, मैं इवनिंग में आ जाऊँगा, शिव ने मुस्कुराकर कहा और दीवा के गाल पर किस कर लिया था। दीवा ने वहाँ की टीचर्स को शिव का खास ध्यान रखने के लिए कहा और वहाँ से चली गई थी। रास्ते में जाते हुए दीवा खुद से बड़बड़ाते हुए बातें कर रही थी। जगह तो अच्छी ही थी और स्टाफ भी काफ़ी फ्रेंडली था, बाकी बच्चे भी खुश नज़र आ रहे थे और आर्यांश ने किसी जगह को रिकमेंड किया है तो ज़रूर वो उस जगह पर पहले आ चुका होगा, दीवा ने मन ही मन खुद को आश्वासन दिया, वरना शिव की फ़िक्र में वो बार बार पलट कर स्कूल की तरफ देख रही थी। आर्यांश का नाम दिमाग में आते ही दीवा का ध्यान फिर से उसी की तरफ चला गया था। दीवा के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए थे। उसका चेहरा देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसे कितना बुरा लगा था। मेरी बातों से उसे यही लगा होगा कि मैं अभी भी पुरानी बातों को दिल से लगाकर बैठी हूँ। ये सच है कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर कई बार कुछ बातों से ज़्यादा ज़रूरी रिश्ते और सामने वाला इंसान होता है। ऊपर से आर्यांश कितना चेंज भी हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग अच्छे दोस्तों बनकर रह सकते हैं, दीवा खुद से बोली। दीवा एक बार फिर रेस्टोरेंट के आगे से गुजरी तो उसने अंदर की तरफ झांक कर देखना चाहा, पर उसे आर्यांश दिखाई नहीं दिया, वो वापस हॉस्पिटल आ गई थी। रेस्टोरेंट में जो भी हुआ वो दीवा के दिमाग से निकल नहीं रहा था, वो कुछ भी करके आर्यांश से बात करना चाहती थी। वहीं दीवा की बातों ने सच में आर्यांश को बहुत हर्ट किया था। उसने यही सोच लिया था कि अगर उसकी मौजूदगी दीवा को इतनी तकलीफ देती है तो वो उसके सामने तक नहीं जाएगा। रात को अपना काम खत्म करके आर्यांश घर पहुंचा। उसे यही उम्मीद थी कि घर पर उसका दूसरा फैमिली मेंबर जरूर मौजूद होगा जो समीक्षा को यहाँ से ले जाने के लिए आया होगा। आर्यांश मनीष के वहाँ होने की उम्मीद कर रहा था। जैसे ही आर्यांश ने दहलीज पार की, उसके सामने पृथ्वी कपूर उसी सख्ती और एटीट्यूड के साथ खड़े हुए थे। उनके पास समीक्षा और सुमन सिर झुकाकर खड़ी हुई थीं। पृथ्वी को वहां देखकर आर्यांश के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। आर्यांश धीमे कदमों से चलकर आगे आया और पृथ्वी के सामने जाकर खड़ा हो गया था। उसने पृथ्वी की आंखों में आंखें डालकर देखा और बिना डरे सीधे सीधे कहा, अब आपका यहाँ कुछ नहीं है जो आप मुझसे छीनने के लिए आए हैं। अच्छा, तो तुम अब मुझसे जुबान लड़ाओगे, ऐसी हालत में आ गए हो लेकिन आंखों में वही घमंड बरकरार है, पृथ्वी बिना किसी भाव के बोले। इसका कुछ नहीं हो सकता, वैसे मेरे घर में आने का कारण, आर्यांश ने भौहें चढ़ाकर पूछा। पृथ्वी कुछ पल रुकी और फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, वापस चलो। और मैं इनकार कर दूं तो? आर्यांश ने जवाब देने में एक पल भी नहीं गवाया। उसके तेवर साफ बता रहे थे कि वो उनके साथ नहीं जाने वाला है। समीक्षा जल्दी से आगे आई और उसने आर्यांश का हाथ पकड़कर उसे आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हारी नाराजगी अपने दादू से थी। जब वो खुद तुम्हें वापस चलने का कह रहे हैं तो फिर तुम क्यों नहीं मानना चाहते? क्योंकि मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, आर्यांश ने समीक्षा को जवाब दिया। आर्यांश को अपना फैसला पृथ्वी को सुनाने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे आर्यांश अपनी जिद से पीछे नहीं हटना चाहता था, वैसे ही पृथ्वी भी अपनी जिद के पक्के थे। मैं चाहता हूं कि तुम कपूर इंटरनेशनल ज्वाइन करो। मैं तुम्हें वापस सीईओ की पोजीशन देना चाहता हूं। तुम हमारे सैलरी बेस्ड सीईओ होगे, पृथ्वी ने ऑफर रखा। मुझे मंजूर नहीं है, आर्यांश ने दोबारा मना कर दिया था। और इनकार करने की वजह? क्या अब तक इस बात को दिल से लगाकर बैठे हो कि मैंने तुम्हें घर और कंपनी से निकाल दिया था? उस टाइम तुमने जो भी किया था तुम उसी के लायक थे। अब बहुत हो गया, तुम्हें जितनी सजा मिलनी थी मिल चुकी थी। वापस आओ और अपना काम संभालो, पृथ्वी ने सख्त आवाज में कहा। और उनकी बातें सिर्फ बातें नहीं, आर्यांश के लिए एक ऑर्डर था। पृथ्वी आर्यांश को उसकी जगह वापस देना चाहते थे। ये सुनकर समीक्षा और सुमन दोनों के चेहरे पर ही हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। अपनी बात खत्म करके पृथ्वी अंदर जाने के लिए मुड़े कि तभी पीछे से आर्यांश जोर से हंसा। पृथ्वी ने पीछे पलटकर आर्यांश को सख्त निगाहों से देखा। उनकी नजर में आर्यांश का ये बर्ताव किसी बदतमीजी से कम नहीं था। जैसे ही पृथ्वी ने आर्यांश की तरफ देखा, आर्यांश ने तंज भरे लहजे में कहा, क्या आपको अभी भी लगता है कि मैंने तुम्हें निकाला और मैंने वो पोजीशन छोड़ दी? क्या इतना आसान था दादाजी? किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। मैंने वो पोजीशन सिर्फ इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मुझे दीवा से दूर जाना था। अगर उसके आसपास रहता तो उसके पास जाने का मन करता। आपने मेरे साथ जो भी किया वो मैंने करने दिया, इसलिए आपने किया। तो अब तुम क्या चाहते हो? पृथ्वी ने सीधे सीधे पूछा। अकेले में बात करें, आर्यांश ने जवाब दिया। समीक्षा हैरत भरे लहजे से आर्यांश की तरफ देखने लगी। ऐसा क्या था जो वो उसके सामने पृथ्वी से बात नहीं कर सकता था? पृथ्वी ने हल्के से सिर हिलाया तो आर्यांश और वो एक कमरे में आ गए थे।
कमरे के अंदर आते ही आर्यांश हाथ बांधकर खड़ा था। उसने पृथ्वी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, सुमन माँ के पास ज्यादा टाइम नहीं है और उनका मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं बस उनके आखिरी दिन मुश्किल नहीं बनाना चाहता। हमारी फैमिली में से किसी ने भी तुम्हें मिसेज वर्मा को घर लाने या उनकी मदद करने के लिए नहीं मना किया है। तुम उन्हें अपने साथ लेकर आ सकते हो। देखो आर्यांश, हम दोनों की जिद अपनी जगह है, पर तुमने कपूर इंटरनेशनल को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था और वो तुम्हारे अलावा कोई और इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता है। बस अब बहुत हो गया, वापस आओ और अपना काम संभालो, पृथ्वी ने सीधे सीधे कहा। आ जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जिस दिन उनकी जिंदगी पूरी हो जाएगी उसके अगले दिन ही आ जाऊंगा, आर्यांश ने अपनी इच्छा बता दी थी। आर्यांश पृथ्वी की बहुत इज्जत करता था, पर दूसरा सच ये था कि वो कभी आर्यांश के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। मजबूरन पृथ्वी ने आर्यांश की बात मान ली थी। सब कुछ तय होने के बाद पृथ्वी कमरे से बाहर जाने लगे, तभी आर्यांश ने पीछे से मायूस स्वर में कहा, क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? तुमने मेरी नाराजगी दूर करने के लिए कुछ किया भी तो नहीं है, उल्टा सब कुछ छोड़कर बिना बताए न जाने कहाँ गायब हो गए थे। ऐसी हरकतों से गुस्सा दूर नहीं होता बल्कि और बढ़ता है, पृथ्वी ने गहरी सांस लेकर कहा। आर्यांश ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया था। पृथ्वी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, पहले तुम खुद तो अपने आप को माफ करो, उसके बाद किसी और से माफ़ी की उम्मीद रखना। पृथ्वी की अनुभवी आंखों ने समझ लिया था कि भले ही 3 साल का समय बीत गया हो, सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे हों, लेकिन आज भी आर्यांश वहीं पर अटका हुआ था। उसकी नज़रों में वो अभी भी वही गुनहगार था जिसने दीवा को इतनी चोट पहुंचाई थी और जिसकी वजह से उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा था। पृथ्वी की बातों से आर्यांश की आंखें नम होने लगी थीं। पृथ्वी ने आगे बढ़कर आर्यांश को गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाकर कहा, क्या तुम यहां उससे मिले होगे? क्या उसने तुम्हें माफ किया? आर्यांश ने तुरंत नामी सिर हिला दिया था। जिस तरह से दीवा आर्यांश की फिक्र कर रही थी उससे एक पल के लिए आर्यांश को भी यही लगा कि दीवा ने उसे माफ कर दिया है, लेकिन आज जिस तरह उसने उस रात का जिक्र किया और उसके लिए आर्यांश को ताना मारा, उससे ये साफ था कि दीवा अब तक उस गम को भूली नहीं है। हाँ, तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया था, उसके पास पूरा हक है कि वो तुम्हें तुम्हारे किए पर माफी दे या सजा। तुम उससे दूर जाना चाहते थे ना, अब तो वो भी यहां पहुंच गई है, ऐसे में अच्छा मौका है, मुंबई जाकर फिर से उससे दूर हो सकते हो। या मेरे पास एक और अच्छा ऑप्शन है, हम न्यूयॉर्क में अपना पूरा बिजनेस सेटल कर सकते हैं। तुम मिसेज वर्मा का वहां अच्छे से इलाज करवा सकते हो, हो सकता है उनकी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसे में दीवा तुम्हारे आसपास भी नहीं होगी, पृथ्वी बोले। वो अभी भी आर्यांश को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे कि दीवा से दूर जाने के और भी तरीके हैं।
उनकी बातें सुनकर आर्यांश के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। वो पृथ्वी से अलग हुआ और गहरी सांस लेकर बोला, मैं आपकी कंपनी का एम्प्लॉई नहीं हूं जो आप मुझे अच्छे ऑफर्स देंगे और मैं तुरंत दौड़ा चलाऊंगा। और आपको किसने कहा कि मैं सैलरी बेस्ड आपकी कंपनी को संभालने वाला हूं? जिस तरह से आखिरी बार आपने मुझे निकाल दिया था, उस तरह से तो मुझे ज्वाइन करने के बाद ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस ऐड करने पड़ेंगे कि कोई चाहकर भी मुझे ना हटा पाए। उसके लिए तुम्हें मुंबई जाना पड़ेगा, पृथ्वी बोले। मैंने कहा ना, थोड़ा टाइम दीजिए। आप हमेशा मेरे साथ जबरदस्ती क्यों करते रहते हैं, कभी शादी के लिए तो कभी कंपनी संभालने के लिए, आर्यांश ने मुंह बनाकर कहा। पहले जहां पृथ्वी आर्यांश से गुस्सा होकर वहां आए थे, लेकिन उससे मिलने के बाद उनका गुस्सा पल में गायब हो गया था। वो दोनों वहां बैठकर आपस में बात कर रहे थे, जबकि समीक्षा कमरे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुन रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। आखिर पापा जी ने इसे मना ही लिया। काश पहले ही सब कुछ अच्छा हो गया होता तो हमें 3 साल आर्यांश के बिना नहीं बिताने पड़ते, समीक्षा ने मायूसी से कहा। आर्यांश के साथ पहले की तरह बात करके पृथ्वी को बहुत अच्छा लग रहा था और वो आर्यांश के अंदर आए बदलावों को भी अच्छे से महसूस कर रहे थे। यही वजह थी कि जिस तरह वो गुस्सा होकर वहां पर आए थे, आर्यांश से मिलने के बाद उन्होंने खुद से आर्यांश को वापस कंपनी संभालने को कहा था। दूसरी तरफ दीवा काम से घर लौट चुकी थी। उसे आने में देर हो गई थी, लेकिन अफसोस, आज ना तो हाउस ओनर उसके लिए खाना लेकर आई थी और ना ही आर्यांश सुमन माँ का बहाना लेकर वहां पहुंचा था। अब तक तो वो रेस्टोरेंट तक बंद हो चुका था जहां आर्यांश काम करता था। इस वक्त दीवा को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे आने के बाद खाना बनाना पड़ रहा था और ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ आर्यांश पर था। आर्यांश की नॉर्मल लाइफ उसे वापस मिलने वाली थी, लेकिन उसने खुद इनकार किया है। कारण जो भी हो, पर अब दीवा को आर्यांश की कमी खल रही है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।